चलिए आगे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मुसलमानों अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा किया करो और सुबह शाम इसकी पाकीज़गी बयान करो। वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और इसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाए। और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। तहियतुहुम यौम यलकौनहु सलाम, जिस दिन ये अल्लाह से मुलाकात करेंगे इनका तोहफा सलाम होगा। और इनके लिए अल्लाह ताला ने बाइज्जत अजर तैयार कर रखा है। ए नबी, यकीनन हमने आपको रसूल बनाकर गवाहियां देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला भेजा है और अल्लाह के हुक्म से इसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग। आप मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। और काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना मानिए और जो तकलीफ इनकी तरफ से पहुंचे इसका भी ख्याल ना कीजिए। अल्लाह पर भरोसा किए रहें और काफी है अल्लाह काम बनाने वाला। ऐ मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, यानी सोहबत की तरफ इशारा है, तो इन पर तुम्हारा कोई हक्के इद्दत नहीं जिसे तुम शुमार करो। बस तुम चाहो अगर कुछ और बस तुम कुछ ना कुछ इन्हें दे दो और भले तरीके से इनको रुख्सत कर दो। ऐ नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिन्हें तू इनके मेहर दे चुका है और वो लौंडियां भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दी हैं, और तेरे चचा की लड़कियां और फूफियों की लड़कियां और तेरे मामुओं की बेटियां और तेरी खालाओं की बेटियां भी कि जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है, और बाईमान औरत जो अपना नफ्स नबी को हिबा कर दे, ये इस सूरत में कि खुद नबी भी इससे निकाह करना चाहे, ये खास तौर पर सिर्फ तेरे लिए ही है और मोमिनों के लिए नहीं। हम इसे बखूबी जानते हैं जो हमने इन पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में अहकाम मुकर्रर कर रखे हैं, ये इसलिए कि तुझ पर हरज वाके ना हो। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बड़े रहम वाला है। तुर्जी मन तशा उमिनहुन, इनमें से जिसे तू चाहे दूर रख दे और जिसे चाहे अपने पास रख ले। अगर तू इनमें से किसी को भी अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग कर रखा था तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं। इसमें इस बात की ज्यादा तवक्को है कि इन औरतों की आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा न हो, और जो कुछ भी तू इन्हें दे दे इस पर वो सब राजी रहें। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है अल्लाह इसे खूब जानता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और हिल्म वाला है। ला यहिल्लु लकन निसा उमिन बाद, इसके बाद और औरतें आप पर हलाल नहीं। किसके बाद? जब औरतों ने नबी की सल्लम की बीवियों ने ये इख्तियार कबूल कर लिया था कि हम आपको लेंगे, हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, आज की पहली आयत। तो जब उन्होंने इसको चूज़ किया तो अल्लाह ताला ने इसका रिगार्ड क्या किया कि अल्लाह के नबी अब आप इसके बाद किसी और औरत से शादी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कोई आपकी शादी नहीं हुई, ये किस्म का इनाम मिला था उन औरतों को दुनिया में। और ना ये दुरुस्त है कि इनके बदले और औरतों से निकाह करे, अगरचे इनकी सूरत अच्छी भी लगती हो, मगर जो तेरी ममलूका हो और अल्लाह ताला हर चीज़ का पूरा निगहबान है। ये है रुकू नंबर 3। इसका उन्वान क्या है? बेमिसाल ताल्लुकात। आप देख रहे हैं कि सूरत अहज़ाब आपको बहुत सारी बेमिसाली चीज़ें दिखा रही है। सबसे पहले बंदे का रब से बेमिसाली ताल्लुक क्या है? नंबर 1, कसरत से उसका जिक्र करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। अल्लाह का अपने बंदे के साथ फिर क्या ताल्लुक बनता है? तीन चार तरह से। नंबर 1, उस पर रहमत फरमाता है, तारीकियों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आता है, मुलाकात के दिन उनका इस्तकबाल सलाम से करेगा यानी जन्नत में या हशर में जहाँ अल्लाह ताला चाहे, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बाइज्जत अजर मुहैया कर रखा है। ऐसे नेक लोगों का फरिश्तों से भी एक ताल्लुक बन जाता है, और वो क्या कि फरिश्ते उनकी रहमत की दुआ करते हैं यानी उनके लिए दुआए रहमत करते हैं। फिर इसके बाद आगे आपने नबी सल्लम का इंसानों से ताल्लुक देखा। पांच तरह का ताल्लुक था इंसानियत के साथ। नंबर 1, गवाह थे। किस चीज़ के गवाह थे? हक के गवाह। شہادت حق کی گواہی دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، دوسری بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے اور روشن چراغ تھے. کبھی محسوس کیے اس تعلق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسانیت کے ساتھ ان کا تھا؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہدایات دی گئیں کہ اپنے فرائض کو ادا کریں. نمبر ایک، کافروں اور منافقوں سے دبنا نہیں، ان کی تکلیفوں پہ غم نہیں کھانا اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. اس کے بعد اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات سے تعلقات کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن عورتوں کو حلال قرار دیا، کون کون؟ وہ بیویاں جن کے مہر ادا کر چکے ہوں، یعنی مہر سے عورت پھر حلال ہوتی ہے. نمبر دو، لونڈیاں کہ جو میدان جنگ میں ملی. اور تیسری چیز، چچا پھوپھی زاد اور مامو زاد، خالہ زاد، مہاجر بہنیں. آج بھی کرسچینٹی میں کزنس میرج نہیں ہو سکتی، تو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور آج بھی اس میں کوئی قباحت نہیں. اور چوتھی چیز ہے ہبا کرنے والی عورت، یعنی آپ کی ایک خصائص میں سے یہ چیز تھی کہ اگر کوئی عورت آ کے کہے کہ میں آپ کو اپنا ہبا کرتی ہوں، یعنی میرے معاملے میں آپ جو بھی معاملہ کریں تو آپ کر سک میرے ساتھ کریں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، تو ایسے وقت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر سکتے تھے بغیر مہر کے. نکاح تو ہوتا لیکن میں اس میں مال نہیں وہ لیتی. کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا اتنی زیرک قسم کی، کیونکہ ان کو یہ ساتھ ہی بہت پسند ہے کہ اللہ کا نبی مجھے مل دے، میرا شوہر ہوگا. اچھا، مجھے کوئی مال نہیں ملتا، بس آپ میرے سے نکاح کر لیں. تو یہ نبی کی خوبی تھی کہ آپ پھر مہر کے بغیر نکاح کر سکتے تھے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں اس سے معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزید نکاحوں کی پھر پابندی ہو گئی جب آپ کی بیویوں نے آپ کو اختیار کر لیا دنیا کے مال و متاع کے بدلے میں. پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب تعلق ٹوٹ جائیں تو کیا کیا جائے، یعنی طلاق ہو جائے. تو پہلی بات ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو عدت نہیں ہوتی، یعنی ایسی عورت، بعض دفعہ نکاح ہوتے ہیں رخصتی کی نوبت نہیں آتی، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسی عورت پہ کوئی عدت نہیں. ہاں، مرد پہ ذمہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ مہر دے، یعنی اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو اپنی طرف سے کچھ دے دے. پیچھے آپ پڑھ چکے، اگر مہر مقرر ہو چکا ہوتا ہے تو پھر نصف دینا پڑتا ہے. تو اس سارے رکوع سے جو بات بنتی ہے وہ بے مثالی تعلقات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے مختلف چیزیں رکھیں. ہم نے اپنے عمل کے لیے اس میں سے کیا سیکھا؟ کیا میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہے؟ سوچئے، کیا میں ذکر کثرت سے کرتی ہوں؟ کیا صبح شام تسبیحات میری زبان پہ ہوتی ہیں، خاص طور پہ صبح شام کی دعائیں؟ پھر کیا واقعی انسان اس چیز کی تمنا کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب میں وہاں جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سلام کرے، میرا استقبال کرے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس رکوع کے ناطے سے کچھ چیزیں جو ہمیں کچھ مزید بات کرنے کے ناطے سے ملی وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایک الزام لگتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ہم اس موضوع پہ بات کر لیں تو شاید کسی کو اس سے فائدہ ہو. تو آپ دیکھیے کہ آج ویسٹ میں جس چیز پہ بہت کیچڑ اچھالا گیا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، کہ آپ نے 11 شادیاں کیوں کی جبکہ عام مسلمانوں کو تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں. تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی کے پیچھے ایک قانون تھا. اصحاب صفا کی صورت میں مردوں کی ایک جماعت تھی، 70-80 کے قریب لوگ تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ میں آئے، مسجد نبوی میں ان کو رکھا جاتا اور وہ صبح شام علم حاصل کرتے تھے. وہیں سے پھر وہ ہیرے نکلے اور انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں علم پھیلایا. اب ضرورت محسوس ہوتی تھی اس چیز کی کہ عورتوں کی تعلیم کا کیا بندوبست کیا جائے. ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ایک دوسرے روم میں عورتوں کا کمرہ بنایا جاتا اور ہاسٹل میں اس طرف عورتوں کو رکھا جاتا. مختلف جگہ سے، مختلف قبیلوں سے عورتیں لائی جاتی، وہاں بیٹھتی اور پڑھتی اور پھر جاتی. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے مشکلات آتی، کتنی زیادہ یعنی محرم اور نامحرم اور یعنی ایسی پابندیاں عورتوں پہ جو لگتی ہیں اس کی وجہ سے مشکل ہوتی اور فتنے اٹھتے. جہاں عورت بھی اور مرد بھی پڑھتے ہیں وہ فتنے آپ سب کو معلوم ہیں. گو کہ وہ دور بہترین تھا، ہم ان سے توقع نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہترین حل کیا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جگہوں پہ شادیاں ہوئیں. آپ کی ہر شادی کے پیچھے یعنی ایک دلیل کیا تھی، ایک وجہ جو بنی क्या थी कि वहाँ की खातून जब इधर आ गईं तो उस औरत ने इल्म सीखा और फिर अपने कबीले अपने करीब के लोगों को उससे फ़ायदा दिया। दूसरी हिकमत आपकी शादियों की क्या थी कि अरब लोगों का एक रिवाज था, जिसकी बेटी उनके घर में आ जाती थी तो वो मातूब हो जाते थे, सर नहीं उठाते थे कि हमारी बेटी इस ख़ानदान में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों से ये भी फ़ायदा हुआ कि जिसकी बेटी उस घर में आ गई उसकी इस्लाम से दुश्मनी टूट गई। सबसे बड़ी मिसाल इसमें अबू सुफियान की है, उनकी बेटी जो थी जब उम्मे हबीबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो दिल नरम हो गया। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने इसमें कोई बुरा नहीं माना कि बाप काफिर है तो बेटी से निकाह ना किया जाए। इसी तरह आप देखिए कि तीसरी एक और चीज़ भी इसकी हिकमत समझ में आती है कि बहुत सारे मसाइल तो मर्दों ने सीख लिए किताबों में पढ़ के, लेकिन नबी की बीवियों के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी हमारे सामने आई। आज भी आप कभी बुखारी में या किसी और किताब में आपके पर्सनल ज़िंदगी के हालात पढ़िए, किताबुल गुसल पढ़िए, किताबुल हैज़ पढ़िए, शौहर बीवी के ताल्लुक पे बात पढ़िए, तो हर रिवायत आपकी बीवियों से है, क्योंकि ये मामला को मर्द तो नहीं बताएगा। तो लिहाजा आपकी निजी ज़िंदगी को ऊपर लाने की बात थी। फिर अगली बात इसमें एक और देखिए कि नबी सल्लम की जितनी शादियां हुई वो नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी बल्कि वक्त की ज़रूरत थी। मसलन आप देखें कि अगर मिसाल है, खुदा ना हास्ता जैसे लोग पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम नाउज़ बिल्ला बड़े रंगीन मिजाज थे, तो आप देखिए कि आपकी पहली शादी 25 साल की उम्र, जवानी पीक, जब एक मर्द के जज्बात भी हैं उसके अंदर कुछ, किससे हो रही है, 40 साल की बुढ़िया से, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला, पहले से दो दफ़ा शादीशुदा थी, पहला शौहर फौत हो चुका था, दूसरे शौहर से तलाक हो चुकी थी, तीन बच्चों की माँ थी, नबी से शादी हो गई। अगर कोई ऐसी बात होती तो कैसी औरत से शादी करते जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी है। फिर आप देखिए हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में कोई दूसरी बीवी नहीं हुई, शादी नहीं हुई हज़रत खदीजा, पूरी मक्की दौर में सिर्फ खदीजा थी, कोई शादी नहीं। उनकी वफ़ात के बाद फिर हज़रत सौदा, मालूम है हज़रत सौदा कितनी उम्र की थी, 50 साल से ऊपर की उम्र की थी जब उनसे निकाह हुआ, और ये वही है जिन्होंने अपनी आखिरी उम्र में अपनी बारी हज़रत आयशा को हिबा कर दी थी कि मुझे अब इन चीज़ों की हाजत नहीं, आप मेरा दिन भी हज़रत आयशा को दे दें। दूसरी शादी एक बुढ़िया से होती है, अगर ऐसी बात होती तो कौन करता। फिर उसके बाद आप देखिए हर शादी हुई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से शादी हुई, एक रस्म टूटी क्या कि लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नबी सल्लम का भाई समझते थे, जैसे बचपन से आप पढ़ रहे हैं ना कि नबी सल्लम के साथ उनका ताल्लुक था, तो एक किस्म की दोस्ती इतनी बन चुकी थी कि भाईचारा था। तो इस तरह की एक रस्म थी उस दौर में कि ऐसे शख्स को चचा समझा जाता था, यानी मसलन नबी सल्लम को अबू बकर सिद्दीक के नाते से हज़रत आयशा का चचा समझा जाएगा कि ये मेरे बाप का एक किस्म का भाई है। तो ये रस्म टूटी थी यहाँ निकाह करने में कि कोई भाई नहीं होता, जो है वो वही है। और इस तरह फिर आप देखिए छोटी उम्र की शादी हुई हज़रत आयशा से, ताकि क़यामत तक के लोगों के लिए इस्तिस्नाई सूरतें मौजूद रहें कि अगर लड़की छोटी उम्र की है तो भी शादी हो सकती है, बड़ी उम्र की बुढ़िया से होके हो गई। फिर इसी तरह आप देखिए कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला यहूदी नस्ल से थी, पता चल गया लौंडी बन के आई, अल्लाह के नबी ने आज़ाद किया, एक तरफ बाप मुसलमानों का दुश्मन है और बेटी नबी के घर में। उसके बाद आप देखिए कि कितने सिलसिले हैं, यानी इतना तवील मौजू है, इंशाल्लाह हो सकता है ये मदर्स ऑफ बिलीवर्स की हम सेशन में कहीं ना कहीं खुद ही बात आएगी मुख्तलिफ हालात से। तो लिहाजा अगर कभी कोई ऐसी बात सुने तो आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, और आप उनके साथ यानी बहस और मुबहसे की भी ज़रूरत नहीं, ये दीन का कोई रुकन नहीं, कोई फ़र्ज नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आपको इन बातों में उलझाएंगे, आप घूम के पहली बात पे आ जाएं, बताओ अल्लाह एक है कि नहीं। कभी भी ऐसे मसलों के जवाब ना दें, कभी एंटरटेन ना करें इन क्वेश्चंस को, इनको पीछे डालें, पहले बताएं कि इस्लाम तो इससे पहले कुछ और चीज़ों का तकाजा करता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे सीनों को खोल दें। आगे चलते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबीश, ए ईमान वालो जब तक तुम्हें इजाज़त ना दी जाए तुम नबी के घरों में ना जाया करो, खाने के लिए ऐसे वक्त में कि आपके पकने का इंतज़ार करते रहो, बल्कि जब बुलाया जाए तो जाओ और जब खा चुको तो निकल खड़े हो, वहीं बातों में मशगूल ना हो जाया करो, नबी को तुम्हारी इस बात से तकलीफ़ होती है तो वो तो लिहाज कर जाते हैं और अल्लाह ताला हक बयान करने में किसी का लिहाज नहीं करता। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो, तुम्हारे और इनके दिलों के लिए कामिल पाकीज़गी यही है, ना तो तुम्हें ये जायज़ है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो और न तुम्हें ये हलाल है कि आपके बाद किसी भी वक्त आपकी बीवियों से निकाह करो। याद रखो, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुम किसी चीज़ को जाहिर करो या छुपा रखो, अल्लाह को हर चीज़ का बखूबी इल्म है। ला जुनाह अलैहिन नफी आबाइहिन, इन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों और अपने भाइयों और इन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों और अपने बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी मेलजोल की औरतों और मलकियत के मातहतों यानी लौंडी और गुलाम के सामने हो। और तो अल्लाह से डरती रहो, अल्लाह तआला यकीनन हर चीज़ पर गवाह है। इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी इन पर दरूद भेजो और खूब सलाम करते रहो, खूब सलाम भेजते रहो। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं यानी तकलीफ, इन पर दुनिया और आखरत में अल्लाह की फुटकार है, इनके लिए नहायत रुस्वाकुन अज़ाब है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ईज़ा दें बगैर किसी जुर्म के जो इनसे सरज़द हुआ हो, तो वो बड़े ही बुख्तान और सरीह गुनाह का बोझ उठाते हैं। ये थरकू नंबर 4, इसका उन्वान क्या है? पर्दे के पीछे से। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाली घराने के अंदर दाखिल होने के कुछ आदाब दिए गए, कौन कौन से, और उसी नाते से फिर आज हमारे मुसलमानों के लिए भी यही हुक्म है। पहली बात है कि बिला इजाज़त किसी के घर नहीं जाना, खाने के वक्त पे नहीं जाना, ऐन खाने का वक्त हो और आप किसी के घर पहुंच जाएं, अच्छा अदब नहीं है। तीसरी बात है, हाँ वो खुद खाने पे बुलाएं तो जाएं, यानी दावत को कबूल करें। अगला अदब क्या है कि खाना खाने के बाद निकल जाओ, बातों में मसरूफ ना हो। अगली बात बताई गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरव्वत की वजह से कुछ कह नहीं सकते कि तुम जाओ, और लेकिन अदब यही है कि रुकना नहीं। और उसके बाद यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास उनके बाप भाई भतीजे और भांजे मेलजोल की औरतें और गुलाम वगैरह आ सकते हैं, और यही हुक्म आज की औरतों के लिए भी है। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ताल्लुक से कुछ बातें हुई, क्या कि जब नबी की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो, क्योंकि इसी में दिलों की पाकीज़गी है, और ये जायज़ नहीं कि अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दो, और ये भी जायज़ नहीं कि आपकी वफ़ात के बाद आपकी बीवियों से निकाह किया जाए। इसीलिए तो उनको उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है कि मोमिनों की माएँ, और माँ से निकाह तो नहीं हो सकता। और नबी से सल्लम की बीवियों को भी इसमें इस चीज़ की नसीहत की गई कि नबी से सल्लम की नाफरमानी से बचो। इसके बाद नबी से सल्लम से हमारे ताल्लुक़ की बात दो तरह से सामने आई, क्या क्या लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह के नबी पर दरूद और सलाम भेजो, और अल्लाह ताला खुद और उसके फरिश्ते भी नबी पर दरूद भेजते हैं, यानी दरूद भेजना, रहमत की दुआ करना, ये सब कुछ उसमें आता है। फिर जो लोग अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देते हैं उनका अंजाम देखा हमने, क्या दुनिया और आखरत में उन पर लानत है, और अल्लाह ताला ने इनके लिए रुस्वाकुन अज़ाब तैयार किया है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेकसूर भी लोगों को तकलीफ़ें देते हैं यानी बहतान लगाते हैं, तो ऐसे लोग अपने सर पे बहुत बड़ा गुनाह लेके जाते हैं। इस रुकू में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अमल की हैं। पहले आपको ये बता दूं कि ये आयात नाजिल हुई थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वलीमे के मौके पे, जिनका जिक्र पीछे हुआ। हुआ क्या कि जब अल्लाह के नबी सल्लम ने इनका वलीमे की दावत दी तो लोग आए, खाना खाने आए। अब खाना खा लिया, बैठे गए, अब लोग जाने को तैयार नहीं। अब अल्लाह के नबी सल्लम को इस चीज़ से अजियत हो रही थी, क्योंकि अमूमन आप देखिए कि जब कोई खाने की दावत पे बुलाता है तो सारे दिन की तैयारी और कई कामों के बाद वो थक चुका होता है, तो पसंद नहीं लगता आता कि ये चीज़ के कोई ज़्यादा देर बैठे, इल्ला ये कि कोई इसलिए बैठे कि उसकी मदद करवा दे, लेकिन अमूमन फिर लोग यही चाहते हैं कि ये लोग घर में जाएं। लेकिन कुछ लोग खाना खाते हैं, फिर चाय, फिर कहवा, फिर उसके बाद कुछ, फिर बातें, और आधी आधी रात तक हिलते नहीं। ये चीज़ नबी सल्लम को तकलीफ़ देती है। अब आप मुरव्वत के मारे कह नहीं रहे, अब देखिए शादी हुई है, दुल्हन है, और घर में एक ऐसा माहौल है और लोग जाना ना चाहें, तो नबी सल्लम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वही के ज़रिए से ये आयत जो है अल्लाह ताला ने उतार दी कि नहीं, अल्लाह के नबी के घरों में अगर आते हो तो फिर तुम उसके बाद उसको इस्तेमाल करके वहाँ से चले जाओ। हमारे लिए इसमें बहुत सारी अमल की बातें, पहली बात वही कि इजाज़त के बगैर नहीं जाना, दूसरी बात है कि खाने के लिए कोई बुलाए तो खाने के वक्त पे आए। बाज़ लोग वक्त से पहले आ जाते हैं और काम नहीं करवाते, बल्कि चाहते क्या है कि हमारे हमारी खातर की जाए, बैठे में कंपनी दे। यकीन करें कि एक बहन थी तो उन्होंने, बेचारी बहुत ही दुखी थी, कहने लगी कि मैंने किसी को शाम में बुलाया और अभी थोड़ा वक्त, यानी शायद उसे काफ़ी पहले ही दोपहरी का वक्त था, तो एकदम बेल बजी और जो हमारी मेहमान थी उनमें से एक मेहमान अपने बहुत सारे बच्चों को लेके आ गई। अब बच्चे जो है उन्होंने घर में शोर उधम मचाया, कहने लगी कि मेरे शोहर जो थे वो रात की ड्यूटी करते थे, वो रात को भर जाग के आए ही थे और सो रहे थे। कहने लगी मुझे तकलीफ हो रही है, बच्चे हैं शोर कर रहे हैं, मैं उनके पास बैठूं? खैर मैंने उनको थोड़ा सा, यानी एक दो बार बच्चों को मना किया और फिर बातों में मैंने कह दिया कि इस तरह मेरे शौहर हैं इस वक्त घर में, तो यानी बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करें। कहती है उनको मेरी ये बात बुरी लगी, कहने लगी अच्छा फिर मैं भी जाती हूँ, बच्चों को लिया चली गई। अब रात जब खाने का वक्त हुआ तो उनको फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो नहीं आ रही कि नहीं जी आप लोगों ने हमारी बेइज्जती की है, हम नहीं आ रहे। एक अच्छी भली दावत, एक कहते हैं ना गुनाह बिलज़त, यानी अच्छी बात बुरी बन गई तो अदब अदाब है। हाँ काम कर रहे हैं, अगले को पता है आप आएंगे हेल्प करेंगे और बात है, लेकिन वक्त से बहुत पहले आप देखिए कि वो पीक टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है, घर की मसरूफियात का सब कुछ साफ हो चुका, खातून खाना खुद गंदी हालत में होती हैं, किचन गंदा है, इंसान नहीं पसंद करता। तो ऐसे भी अदब सिखाने अल्लाह ताला ने सिखाए। मैं जब ये बातें पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कोई अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दीन से ज़्यादा तहजीब सिखाने वाला है, कोई इतना मुहज़्ज़ब है जो हमें ये उसूल सिखाए? तो ये चीज़ जहन में रखने की है। फिर दूसरी चीज़ ये कि खाने के बाद ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, वैसे भी पसंदीदा नहीं है, आपको मालूम है कि ईशा की नमाज के बाद खाने के बाद फिर बातें गपशप करना दिल सख्त हो जाता है इससे, तो लिहाजा निकलना है। फिर अगली चीज़ जो इससे हमने सीखी वो क्या है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मेहमान को मुंह से नहीं कही जा सकती मुरव्वत के मारे, लेकिन ये है कि अगर खुद इंसान समझ जाता है तो फिर ये चीज़ उसको बहरहाल फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद इस आयत का एक हिस्सा जो है फसलुहुन्न मिन वरा इल्हिजाब, इस ये आयत का हिस्सा जो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश पे नाजिल हुआ था। हज़रत उमर देखा करते थे कि नबी सल्लम की महफिल में हर तरह के लोग आते थे, मोमिन भी आते थे, सहाबा कराम थे, फिर कुछ और भी मुनाफिकीन तक भी आते थे। अब चूंकि उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं उतरा था तो हज़रत उमर को बड़ी तकलीफ़ लगती थी, नबी सल्लम को कहते थे अल्लाह के नबी आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, काश आप मोमिन उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म दे दें। तो आप कहते थे मैं कैसे दूँ जबकि अल्लाह ताला का भी हुक्म नहीं आया। तो बिलाखिर फिर हज़रत उमर की बार बार की तकाजों पे, सवालों पे ये हुक्म आ गया कि अब इसके बाद नबी की बीवियों से अगर कुछ मांगना है तो पर्दे के पीछे से मांगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुझे हदीस बड़ी प्यारी लगती है, इसी मौके पे कहते हैं कि आपको पता है कि 10 साल की उम्र के थे तो नबी सल्लम के घर में आ गए थे, और जब मदीना में आए इनकी माँ उम्मे सुलैम थी वो इनको छोड़ गई, तो हुआ क्या कि जब उन्होंने, यानी कहते हैं कि मैं खुलेआम नबी की बीवियों के हुजरों में आता था जाता था, जैसे घरों में काम करने वाले होते हैं, कहते हैं एकदम मैंने नबी सल्लम की किसी बीवी के हुजरे में आने की कोशिश की तो आगे पर्दा डाल दिया गया। अच्छा याद रखिए कि उस दौर में दरवाजे नहीं होते थे, अब तो है ना कि दरवाज़ा नॉक करेंगे बंद कर लेंगे कोई नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त खुला था। तो कहते हैं कि जब मैं आने जाने लगा तो एकदम मेरे आगे पर्दा डाल दिया गया, कहते हैं कि मैं घबरा गया, कहा कि मैंने कोई गलती कर दी क्या, जैसा मामला हो गया। तो फिर उस पर बताया गया कि नहीं अल्लाह का हुक्म आ गया कि अब आप भी आएंगे तो नौकर करके आएंगे। लोग बड़े बड़े देवरों से इसलिए पर्दा नहीं करते कि जब हम गए थे तो ये बच्चे थे, इनको तो हमने हाथों से खिलाया और पिलाया है। बहरहाल बड़ी बात है इसमें, मुझे लग रहा है आज फिर वक्त ऊपर चला जाएगा अगर हमने सूरत अहज़ाब पे इसी तरह लगे रहे, लेकिन अदब क्या पता चला। फसलुहुन्न मिन वराइ हिजाब, औरत किसी मर्द से अगर कुछ ले या दे, ज़रूरत के तहत मर्द घर में अगर आता है या कुछ लेन देन होता है तो वो हिजाब के पीछे से होगा। दूसरी बात क्यों, ये पाकीज़ा है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए। आज लोग ऐसी पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करते, कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अगर घर में आने वाले मर्द आ जाते हैं बैठ जाते हैं और हम मुरव्वत में उनको चाय पूछ लेते हैं और वो कहते हैं हाँ भाभी आप जैसी चाय कोई नहीं बनाता, पी लेते हैं और फिर कंपनी देने के लिए अगर मैं भी टेबल पे बैठ जाऊँ और फिर बातों ही बातों में अगर कुछ और बातें होने लगती, इसमें कबाहत क्या है, आखिर मैं शादीशुदा हूँ, वो मेरे शौहर के दोस्त हैं वो भी शादीशुदा हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम, ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए पाकीज़गी है। मैं इस पे सिर्फ एक ही जुमला कहूंगी कि सहाबा कराम के दिल ज्यादा पाक थे या आज के मर्दों के, उनकी निगाहें ज्यादा पाक थी या आज की औरतों की ज्यादा निगाहें पाक हैं। उसके बाद आयत नंबर 55 यानी 55 आयत है, इसके नाते से फिर दोबारा उसी चीज़ की ताकीद हो रही है कि अब पर्दा की यानी ऐसे लोगों के सिवा किसी और के सामने नहीं होगा। और आपको मालूम है कि बिल आखिर हतमी हुक्म जो पर्दे का उतरा था वो हज़रत ज़ैनब रज़ील्लाहु तआला ही के इस निकाह के मौके पे उतरा था, और जब ये आयतें उतरी तो फिर इसके बाद बाहर वाले जो लोग हैं उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन चंद महरम रिश्तों का नाम लेके यहाँ बता दिया गया कि ऐसे हालात में यानी ऐसे मर्दों के सिवा कोई और मर्द घरों में नहीं आएगा। आप खुश हो रहे होंगे ये सोच के कि ये सारी बातें तो ज़ादे मतहरात के लिए थी, हम तो इसमें बच गए। तो चलिए अगली आयत पढ़ते हैं। या अय्युहन नबी युकुल्ली अज़वाजी का बबनाती कव निसा इल्मुमिनीन निसा इल्मुमिनीन युतनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन वकान अल्लाह गफूर रहीमा। ए नबी, अब इसको एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, अल्लाह अपने नबी को पुकार रहे हैं, बाकी सारे हुक्म अल्लाह ने खुद दे दिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, क्योंकि लोग मान लेंगे, लेकिन अल्लाह को भी मालूम था कि कुछ लोग आएंगे जो बड़ी मीन मेख करेंगे, तो उनको कहा कह दी ए नबी, यानी ये बात नबी के जरिए से कहलाई गई। मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी को इज्जत देने के लिए कोई चीज़ आपने किसी से लेनी होती है आप खुद ले लेते हैं, किसी से रिश्ता लेना होता है तो बड़े को भेजते हैं, क्यों कि बड़े को ना नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला पर्दे का हुक्म ख़वातीन को नबी के ज़रिए से देता है कि अगर वाकई उससे मोहब्बत है, इस निस्बत का कुछ ख्याल है, तो फिर इस बात को गौर से सुनना। क्या कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, कौन हुई बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन, और बेटियाँ कौन हो गई आपकी, चार बेटियाँ। हालांकि बेटियां नबी की उम्मत भी बेटियां होती हैं, जो उम्मत की बेटियां हैं वो नबी की बेटियां हैं, लेकिन और मुसलमानों की औरतों से, ये कौन है, ये कौन है, कहाँ रहती हैं, किस मुल्क में, किस इलाके में। चलिए दोबारा पढ़ती हूँ शायद को। ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर ये सताई न जाएंगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर अब भी ये मुनाफिक और वो जिनके दिलों में रोक है और वो लोग जो मदीना में अफवाहें और वो लोग जो मदीना में गलत अफवाहें उड़ाने वाले हैं बाज ना आए, तो हम आपको इनकी तबाही पर मुसल्लत कर देंगे, फिर तो वो चंद दिन ही आपके साथ इस शहर में रह सकेंगे। इन इन पर फिटकार बरसाई गई, जहाँ भी मिल जाएं पकड़े जाएं और खूब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। इनसे अगलों का भी यही दस्तूर रहा, और तुम अल्लाह के दस्तूर को हरगिज़ बदलता हुआ ना पाओगे। लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, आपको क्या खबर, बहुत मुमकिन है कि कयामत बिल्कुल ही करीब हो। अल्लाह ताला ने काफिरों पर लानत की है और इनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, खालिदीन फीहा अबदा ला यजिदून वलीयं वला नसीरा, जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे, वो कोई हामी और मददगार न पाएंगे। यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, उस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। कबाब तला कभी, एक साइड पक जाती है ना तो फिर दूसरी साइड आप ऊपर कर देते हैं। उस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे, हसरत और अफसोस से कहेंगे कि काश हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करते। वकालू रब्बना इन्ना अतौना सादतना वकुबराना फअदल्लूना सबीला, और कहेंगे ए हमारे रब, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की बात मानी जिन्होंने हमें राह रास्त से भड़का दिया, परवरदिगार तू इन्हें दुगना अजाब दे और इन पर बहुत बड़ी लानत फरमा। ये था रुकू नंबर 5, इसका उन्वान क्या है, तुम बिकाऊ माल नहीं हो, तुम डेकोरेशन पीस नहीं हो। इस रुकू में जो बातें मालूम हुई, पहली चीज ये पता चली कि हिजाब हिफाजत के लिए है, कैद करने के लिए नहीं। जैसे हर कीमती चीज छुपाई जाती है, इस तरह औरत को भी कहा कि अपने हुस्न को छुपा लो। तुम शोकेस में रखा हुआ कोई डेकोरेशन पीस नहीं हो कि हर आने और जाने वाला तुम्हारे हुस्न से फायदा उठाए। तुम कोई बिकने वाली चीज नहीं हो कि जिसको देख के लोग तुम्हारे हुस्न से तुम्हारी कीमत का अंदाजा लगाएं। तुम अपने शौहर की अमानत हो, लिहाजा उसके लिए अपने आप को महफूज करो। दूसरी चीज जो बात पता चली क्या, कि औरतों को हुक्म दिया गया कि युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, अपने ऊपर चादरों के पल्लू लटका लें। इस हिस्से को भी लोग नहीं समझते, और हमारे यहाँ अमूमन एक लफ्ज़ जो पर्दे के नाम पे आता है, और वो क्या है, बुरका। बाज़ लोग उसको प्यार से तंबू भी कहते हैं और बाज़ शिटल कॉक भी कहते हैं। असल इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में हमें बात वाजे होनी चाहिए। बाज़ कहते हैं कि देखे चादर तो है, बुरका नहीं, बुरका है तो फुला नहीं। तो मैं चाहूँगी कि आपके सामने जो जलाबीब लफ्ज़ आया है, इसकी वाहिद क्या है, जिलबाब। जिलबाब की लिंग्विस्टिक, यानी जिसको आप डिक्शनरी मीनिंग कहेंगे, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी किसी भी अरब लैंग्वेज की डिक्शनरी आप खोल के देखेंगे तो उसमें जिलबाब किसको कहते हैं, अल जिलबाब और रिदाउ फौकल हमार। यानी अल जिलबाब क्या है, जिलबाब और रिदा फौकल हिमार, ऐसी चादर जिसको खिमार के ऊपर पहना जाए। खिमार क्या होता है, दुपट्टा, आम दुपट्टा जो पतला है, खूबसूरत हो सकता है, फूलों वाला हो सकता है, कढ़ाई वाला हो सकता है, उसमें मोती लगे हो सकते हैं, उसमें सितारे लगे हो सकते हैं, वो होता है खिमार। पीछे पढ़ चुके, बिखुमुरिहिन अला जुयूबिहिन। खिमार के बार ऊपर क्या है, जिलबाब। जिलबाब उस कपड़े का नाम है जो औरत घर से बाहर जाते वक्त पहनेगी। ये घर का कपड़ा नहीं है, ये बाहर का कपड़ा है। यहाँ औरत के घर से बाहर निकलने के आदाब के अंदर जो मैंने एक चीज़ वहाँ छोड़ी थी, वो यहाँ ऐड हो गई कि जब घर से निकलेगी तो अपने ऊपर जिलबाब पहनेगी। सवाल पैदा होता है, जिलबाब क्या होता है, इसको भी अरबी डिक्शनरी से देखेंगे। जिलबाब कहते हैं उस चादर को कि जब सर के ऊपर डाली जाए तो पाँव की उंगलियाँ तक छुप जाए। और आज के दौर में इसकी बेहतरीन सूरत है सऊदी बुरका, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो। जिलबाब का लफ्ज़ तो आज आम है। एक होता है गाउन, जिसको आप यानी एक आम थोड़ा हल्का फुल्का ढीला ढाला देखते हैं, लेकिन जिलबाब क्या होती है कि वो एक बिल्कुल सीधा कपड़ा होता है, और आप देखें कि उसके बीच में थोड़े रास बाजू निकालने की जगह होती है। यानी जिलबाब को अगर आप यूं करते हैं ना, तो पूरा दो कपड़े के ढेर होते हैं, एक आगे और एक पीछे आपके जाता है। तो जिलबाब से फिर यहाँ क्या मुराद हुआ कि औरत ऐसे अंदाज से अपने आप को छुपाए कि सर से लेके पाँव तक उसका जिस्म छुप जाए। अब सवाल पैदा होता है कि वो चादर जिसको हम कहते हैं कि क्या ये चादर पहन लेती हूँ यही काफ़ी है, तो क्या वो जिलबाब है या खिमार है? क्या वो फिर जिलबाब की सारे तकाजों को पूरा करती है कि नहीं? ये अब हर बंदे के अपने ईमान और तकवे की बातें हैं। लेकिन यहाँ जो बात पता चली कि मुसलमान औरत जैसे घर में होती है वैसे उठ के बाहर नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ ऊपर पहनेगी, और वो पहनेगी खूबसूरती छुपाने को, दिखाने के लिए नहीं। ये नहीं कि उसके ऊपर फिर मोती सितारे लगा लिए। मैं तो आजकल के जितने ये इस्लामिक ड्रेसेस और गाउन और स्कार्फ से, मैं कहती हूँ ये इंडोर ड्रेसेस हैं, ये आउटडोर नहीं है। अपनी पार्टीज में पहनो, अपनी औरतों में पहनो, खूबसूरत स्कार्फ इनको पहनो, लेकिन ये बाहर के कपड़े नहीं है। लेकिन बाहर हाल अगर शुरू करता है कोई, और इन्हीं चीज़ों की अट्रैक्शन में शुरू भी कर लेता है, तो इंशाल्लाह एक वक्त आता है कि जब दिल में ईमान और तकवा बढ़ता है, इंसान इन चीज़ों को बाहर हाल दुरुस्त कर लेता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसके ऊपर यानी एक और चीज़ भी समझ कहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा और आप बैठे थे, कहने लगी कि अल्लाह के नबी, हम मुहाजिरात औरतें मक्का से घर छोड़े आपके पास आए, लेकिन आप जब तारीफ करते हैं आप अंसारी औरतों की करते हैं, क्यों? यानी वो दिल में तकाबुल आ जाता है ना, इंसान जितना मर्जी नेक हो तकाबुल ज़रूर करता है। तो कहने लगी कि आप हमारी तारीफ कम और अंसारी खवातीन की बहुत करते हैं। तो आपने फरमाया कि आयशा, हाँ क्यों नहीं, मैं उन औरतों की तारीफ क्यों ना करूं जिनको मैंने अल्लाह और उसकी बात को सुन के उसकी तस्दीक करने वाला पाया कि रात को ईशा की नमाज में मर्दों ने हिजाब की आयतें सुनी। कौन सी आयतें, जो भी हम पीछे पढ़ के आए, आयत नंबर 55। और उन्होंने घर जाके अपनी खवातीन को बताया, और यही आयतें जो इस वक्त हमारे सामने, ये भी उसी मौके पे उतरी थी हज़रत ज़ैनब के वलीमे पे, 5 हिजरी थी जिसमें ये निकली, तो आपने फरमाया कि रात को औरतों ने हिजाब की यानी इस आयतों को सुना और घर में औरतों को बताया, और सुबह अगले दिन फजर की नमाज पे जो खवातीन आईं, मा मिनहुन्न इमरातुन इल्ला कामत मिर्तहा, कोई एक औरत ऐसी न थी कि जिसके ऊपर बड़ी चादर न थी। रातों रात उन्होंने घर की बिस्तरों की चादरों को ओढ़नियों में बदल दिया, और कहते हैं वो इस तरह बेहिस थी का अन्न अला रुस हिन्न गरबाब, गोया उनके सरों पे कव्वे बैठे हुए हैं कि अगर वो हिली तो वो अपनी जगह से हट जाएंगे। बाज ने काली चादरों की तरफ इशारा किया कि वो सब इस तरह चादरों में छुपी थी जैसे कव्वे हैं और वो साकिन बैठे हैं। तो ये होती है सुन के मानने की बात, तस्दीक। जहन में तो बातें बहुत सारी जाती हैं, लेकिन शायद आज का दिन इस बात को हमारे दिल में उतार दे। कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। यौम तुकल्लबु वुजूहहुम फिन्नार, वो चेहरे जिसको जाहिर करना चाहते हैं, अल्लाह ना करे कि आग के अंदर जलने लगे। फिर बाज दफा ऐसी चीजें इंसान क्यों नहीं कर पाता कि लोग क्या कहेंगे, हमारे खानदान में कोई नहीं करता, हमारे बड़े हैं तो आयत नंबर 67 को देख ले, वकालू रब्बना इन्ना अतवाना सादतना, हम तो अपने बड़ों को देखते रहे, हम अपने लीड्स को देखते रहे, हम अपने माशरे के शोहरत जाबता लोगों को देखते रहे, जब वो नहीं करते तो फिर हमें क्या करना की जरूरत है। तो लिहाजा इस रुकू का यही बात है कि अल्लाह से आज मदद मांगनी है। शायद आज की दिन जिंदगी का दिन हमें उस रास्ते पे ले जाए जिसके बाद खैर के रास्ते खुलते हैं। यकीन कीजिए खैर के रास्ते खुलते हैं। मैंने देखा है कि जब औरत अपने लिबास और हिजाब के मामले में कॉन्शियस होती है ना, तो एक एक करके बहुत सारी बुराइयां छुटती हैं। फिर इस रुकू में कितने ही दलायल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि औरत का चेहरे का पर्दा किधर है। बहुत सारे लोगों से आपने पूछा होगा, हो सकता है कुछ स्टडी सर्कल में वो बुक भी गई होगी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि पहली, अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप इस बात को आज ही मान लें, लेकिन दलाइल के हद तक बात करूंगी कि कौन कौन से दलाइल मिलते हैं कि औरत चेहरे का पर्दा नहीं खोले। पहली बात है कि जो लंबी लिस्ट सूरत निसा में, सूरत नूर में मिली, आज फिर मिली कि शोहर और बाप और बेटे इनके सामने जा सकते हो, क्या जाहिर कर सकते हैं शोहर और इन शोहर के अलावा बाकी महरम रिश्तेदारों के सामने हम क्या खोलते हैं, चेहरा खोलते हैं ना, खुदा ना हासा जिस्म तो नहीं खोलते। तो इनका नाम लेने की क्या जरूरत थी अगर हर एक के सामने खोल सकते थे, सवाल आता है। दूसरी बात है फसलू मिन वराइल हिजाब का क्या मसला है, फिर क्यों कहा पर्दे के पीछे से मांगो। फिर तीसरी दलील आपको मैंने उस दिन सूरह नूर पढ़ाते हुए हजरत आयशा के अमल से दी, और उस हदीस में ऐसे ही वाकई बुखारी का रिवायत है कि जब उन्होंने एकदम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुन के सफवान बिन मुअत्तल की जुबान से चेहरे से चादर हटाई तो उन्होंने उनको पहचान लिया, क्यों कि वो पर्दे की आयतें उतरने से पहले उनको देख चुके थे। इससे क्या समझ में आता है, वो औरतें जिनसे निकाह नहीं, उम्मत की माएं, वो पर्दा कर रही हैं, वो हिजाब कर रही हैं, तो फिर बाकी जरूरत क्या है रह गई। तो असल बात क्या है कि जब इंसान वाकई अपने आप को महसूस करता है तो फिर उसको बात समझ में आती है। और एक आखिरी बात कहूंगी कि हर वो बंदा, आप कहेंगे फलां फतवा देता है, फलां मजहब के लोग फलां, तो मैं एक बात फिर भी कहूंगी कि अगर कोई ये फतवा देता भी है, लेकिन ये कोई फतवा नहीं देता कि सारा दिन ब्यूटी पार्लर में बैठ के सजो और फिर सारे मर्दों के सामने आ जाओ। फिर उसमें क्या है कि चेहरे पे एक चीज भी ऐसी ना हो कि जिससे आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सके, कोई मेकअप, कोई जेवर, कुछ नहीं, जैसे घर में बैठे हैं उसी तरह उठे, अपने चेहरे पे मतलब जैसे भी अपने आप को पहना तो निकल गए, मेकअप करके, सजावट करके, आराइश करके, आतिशी कपड़े पहन के, सुरखों सफेद रंग पहन के फिर निकलना और दूसरों को गुनाह की दावत देना, ये तो कोई मसलक नहीं कहता, ये तो किसी मुल्क के इमाम नहीं कहते, किसी मुल्क के आलिम नहीं कहते, शायद किसी का दिल कहता हो तो फिर अल्लाह ताला हमारे दिलों को हक बात का मुहाफिज कर दे।